एवरीवन, मैं हूँ पहल राठौड़ और लेके आ गई हूँ मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि जाने माने सेलिब्रिटीज से, जाने माने हस्तियों से मैं आपको मिलाऊंगी, तो उसी वादे के चलते मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ गीतिका सक्सेना जी का इंटरव्यू। जी हाँ, गीतिका सक्सेना जी जो कि मेलबर्न से छपने वाली पत्रिका हिंदी पुष्प में अपनी विभिन्न कहानियां लिख चुकी हैं, कनाडा से प्रकाशित होने वाली डिजिटल पत्रिका साहित्य कुंज में भी उनकी कहानियां एवं लघु कथाएं प्रिंट हुई है। उनके नाना स्वर्गस्थ श्री भारत भूषण जी जाने माने कवि थे और उनके पिता श्री वी के सक्सेना जी जो के जाने माने एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तुशास्त्री हैं और वो शुद्ध हिंदी के ज्ञाता भी हैं। तो आइए सुनते हैं गीतिका सक्सेना जी का इंटरव्यू, उनकी बातचीत। हाँ, तो गीतिका जी, जैसे कि मैं आपको जानती हूँ, आपके साथ बात भी की है, तो आपको ये लिखने की रुचि कब से स्टार्ट हुई? आपको कब से लगा कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे लिखना
लिखने
है?
की इंटरेस्ट आपको कब जगा? लिखना मैंने तब शुरू कर दिया था जब ये समझ भी नहीं सकती थी कि लिखने में रुचि है। दरअसल असल में इसका मेरे बचपन से बहुत लेना देना है। मेरे नाना स्वर्गीय कवि श्री भारत भूषण जी बहुत जाने माने कवि थे हिंदी के। मेरे पिता जो हैं वो इंटरनेशनल फेम के एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री हैं, तो वो भी श्री वी के सक्सेना जी।
अच्छा, क्या बात है।
उनकी भी हिंदी जो है वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। और मेरी माँ जो है श्रीमती जूही सक्सेना, वो हिंदी में एमए है।
अच्छा।
तो हिंदी का एक ऐसा वातावरण था हमारे घर में कि हिंदी से बच पाना बड़ा मुश्किल था सबसे पहले तो। और मतलब जैसे होता है ना, बच्चे बड़े होते हैं, आजकल भी मैं देखती हूँ बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो हिंदी छूटती जाती है और इंग्लिश जो है अंग्रेजी उनके उसमें स्वभाव में बोलचाल में वो अंग्रेजी पे ज्यादा जोर आता चला जाता है। ये एक समय मेरे साथ भी हुआ क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, तो मेरे साथ भी ये हुआ। और हुआ ये कि वर्णमाला ही नहीं याद हो रही थी, मतलब एक समय जब बड़े हो गए तो एबीसीडी तो ए टू जेड पूरा याद रहा लेकिन वर्णमाला नहीं याद रही। तो एक दिन मैंने अपने नाना से कहा, मैंने कहा वर्णमाला तो याद ही नहीं होती, हिंदी कितनी कठिन है। तो उन्होंने मुझे देखा और बोले कैसे याद नहीं होती, मैं बताता हूँ कैसे याद होती है। तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया जिससे कि आपको वो एक जो उसकी सीक्वेंस है उसमें याद हो गई मुझे। और सच्चाई ये है कि मुझे आज तक याद है। अगर वो वर्णमाला वो मुझे नहीं सिखाते तो शायद मैं आज हिंदी में नहीं लिख रही होती, क्योंकि मैंने जो अपनी सबसे पहली जो कविता लिखी, जो पोइट्री लिखी, वो इंग्लिश में थी। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, आज मैं पहली बार ये बता रही हूँ कि मैंने इंग्लिश में लिखी थी सबसे पहली पोइट्री। और मैं बहुत छोटी थी, मतलब इतनी छोटी थी कि मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने लिखा क्या था। और वो अब कहीं मेरे पास पेपर भी नहीं है जिसको मैं कहीं पढ़ सकूं या याद भी कर सकूं कि क्या लिखा था उस समय मैंने। लेकिन करीब 15-16 वर्ष की उम्र थी जब हिंदी का पहला मुक्तक मैंने लिखा, और वो उसके बाद मैं काफी लिखती रही क्योंकि कविता का माहौल था घर में नाना की वजह से, तो मुझे लगता था कि मैं कविता ही लिख सकती हूँ, तो कविताएं लिखती रही छोटी छोटी करके। लेकिन कभी छपवाई नहीं क्योंकि मैं लिखा करती थी श्रृंगार रस में, रोमांटिक। अब उम्र छोटी थी तो लगता था
अच्छा।
अंदर से होती थी लोग क्या सोचेंगे मेरी रोमांटिक पोइट्री पढ़ के, कहीं कोई ये नहीं सोचे कि ये इसका किसी से अफेयर चल रहा है, इस तरह की बातें बहुत मन में आती थी और डिस्करेज करती थी कि नहीं। तो मैंने आप मानेंगे अपने माता पिता को भी नहीं बताया कभी, और उन्हें तो उन्हें मैंने अपने नाना को भी कभी नहीं बताया कि मैं लिखने का मुझे शौक हो गया है। फिर जब मेरा विवाह हुआ सन
अच्छा
2015 में, तो विवाह होके आई और ससुराल में सबने कहा भाई कोई गाना सुना दो। हमारे यहाँ कायस्थों में ये एक प्रथा है, कहते हैं गाना सुनाइए या डांस करके दिखाइए। तो मैंने जो कोर्टशिप पीरियड था उसमें चार पंक्तियां लिखी थी, वो मैंने
चलिए वो ही सुनवा दीजिए।
वो चार पंक्तियां ये थी। चांद तुम जो हो तो चांदनी मैं बनूं, मीत तुम जो हो तो प्रीत मैं ही बनूं, आ बंधे इस तरह इस प्रेम बंध में, आ बंधे इस तरह इस प्रेम बंध में, जब भी जीवन मिले मैं तुम्हारी बनूं, जब भी जीवन मिले मैं तुम्हारी बनूं। ये चार पंक्तियां मैंने लिखी थी। और धन्यवाद,
बहुत ही बढ़िया आपने लिखी है, और आपने
धन्यवाद।
आपकी आवाज भी बहुत ही बढ़िया है। राइटर के साथ साथ
तो
सिंगर भी है
यहां से
एकदम।
समझिए एक सफर की शुरुआत हुई। यहां से लोगों को पता चला कि मैं लिख रही हूं, और मेरे माता पिता को भी तभी पता चला कि मैं लिख रही हूं। और जब विवाह हुआ तभी मेरी मुलाकात हुई मेरी मामी सास से, जो एनआरआई है और जानी मानी अंतरराष्ट्रीय लेखिका
अच्छा
है, श्रीमती श्रीमती उषा राजे सक्सेना जी। उन्होंने जब उनसे बातचीत होती थी तो
जी
उन्होंने बातचीत करते करते मेरे अंदर ये महसूस किया कैसे तो भी उन्होंने कि मैं कहानी लिख सकती हूँ। और कई वर्षों तक वो मुझे इस बात के लिए समझाती रही कि तुम लिख सकती हो, लिखो। लेकिन मैं कहीं तो भी अपने अंदर ये हिम्मत नहीं जुटा सकी कि मैं कहानी लिख सकती हूँ, क्योंकि सोचा ही नहीं था कभी।
हाँ जी, आप कविता ही लिख रही थी तो आपको कविता के जेनर में ही
कहानी
आती, तो
लिख
आपको
सकते।
ये लग ही नहीं
अच्छा
रहा था कि
कविता
आप
क्या
कभी
है, छोटे
कहानियां
छोटे मुक्तक लिख
लिखी
रहे थे हम, 4 लाइन का एक
हैं,
मुक्तक बनाया, फिर कुछ भाव अंदर मन में उठे और 4 लाइन का बनाया, ऐसे
पर
करके कविता
आप
बन गई। कोई
लिख।
ऐसा था नहीं कहीं स्टेज मंच पे बढ़नी है कि जल्दी खत्म करनी है या किसी पब्लिशर को भेजनी है इसलिए आपको जल्दी खत्म करनी है, तो वो सब धीरे 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 चल रहा था। अब कहानी जो है, कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब हो, एक आप पूरा एक प्लॉट सोचेंगे, कोई कोई घटना ऐसी सोचेंगे, उसको आप किन्हीं किरदारों को जन्म देंगे उसमें, उसके बाद उसमें और भी स्थितियां ऐसी पैदा होंगी जिनसे वो घटना जिस पे आपने लिखी होगी वो हुई होगी। तो इस तरह का बड़ा लंबा एक थॉट प्रोसेस कहानी के लिए होता है। इसलिए मैं कहानियां पढ़ती बहुत थी। शिवानी शिवानी जो थी उनकी, वो मेरी फेवरेट राइटर हैं हिंदी में, उनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद हैं। और इंग्लिश में सिडनी शेल्डन मुझे बहुत पसंद थे। तो पढ़ती मैं बहुत थी लेकिन लिखने की कभी
अच्छा
सोचा नहीं, कभी हिम्मत नहीं की। जब बेटे का जन्म हुआ सन 2020 में, तब पहली बार मैं नहीं जानती कैसे मैंने रात में एक कहानी लिखी जो मेरी सबसे पहली कहानी है, गर्विता। और वो कहानी कुछ इस तरह लिखी गई कि जिसने भी पढ़ी उसे बहुत पसंद आई, इतनी कि वो ग्रह शोभा में मैंने भेजी थी और ग्रह शोभा में छपी जी।
क्या बात है। तो उसके कुछ मुझे वो आप सुना दीजिए कि वो कहानी किस तरह की थी वो, कुछ
ग्रह
थोड़ा सा
शोकवा में
प्लॉट सुना
छपी है
दीजिए
गर्विता
कहानी
जो
का थोड़ा
थी।
सा।
गर्विता एक ऐसी स्त्री थी जिसका नाम गर्विता है, और अभी अभी एक बच्चे को उसने जन्म दिया है। और एक बड़ी कॉमन वो होती है हमारे समाज में कि अक्सर ही स्त्रियां जो जब जन्म देती हैं बच्चे को, तो उनकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उसमें उनकी अपनी कोई गलती नहीं होती। सही बात यह है कि वो इतनी कठिनाइयों से जूझ के एक बच्चे को जन्म देती हैं, पूरे 9 महीने का जो सफर है वो भी कठिनाइयों से भरा है, फिर जो जन्म का जो पूरा डिलीवरी होती है वो भी, उनमें कितनी कठिनाइयां एक स्त्री को होती हैं। और उसके बाद में जब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ता है,
बिल्कुल
तो कई बार अपने ही घर के लोग जो हैं उसको तिरस्कृत करने लगते हैं। तो ये एक ऐसी स्त्री की कहानी थी जो जिसका पति ही, मतलब ये जिसने कहना शुरू कर दिया कि तुम इतनी मोटी हो गई हो, और बच्चा जब होता है तो उसके साथ में कितना चेंजेस होते हैं एक पति पत्नी की जीवन में। बच्चा है, रात में सोता नहीं है शुरू में, तो नींद खराब होती है, और सब मतलब सैकड़ों तरह के चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। उस पर ये कहानी मैंने
हाँ
लिखी
जी, बहुत ही सहायक,
थी।
बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी, क्योंकि आजकल के जमाने में ये बहुत ही बड़ी एक बात होती है कि जो एक मैरिड लाइफ में हम लोग, जो आप लोग जी रहे हो, और मैरिड लाइफ में जीने के बाद वो मैरिड लाइफ में वो सब कुछ संभालना, अपने आपके स्ट्रक्चर को देखना, अपने आप को भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देना बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर कोई हमें साथ ना दे रहा हो तो फिर हमें साथ देने वाला कुछ तो चाहिए, कोई तो चाहिए, तो हमें ही अपने आप को साथ देना पड़ेगा। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि आप भी कला क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आप भी मैरिड है, तो आपको भी कुछ ना कुछ संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ा होगा। सपोर्ट है, सब कुछ है, फिर भी आपको मैरिज के बाद क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा
देखिए, आपकी
कला
आपका
क्षेत्र
प्रश्न
में,
बहुत अच्छा
वो मैं
है,
जानना चाहती
और
हूँ।
अक्सर सिर्फ कला क्षेत्र नहीं, हर ही क्षेत्र में हम देखते हैं कि शादी के बाद जब महिलाएं कुछ भी काम के लिए निकलती हैं तो संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि शादी अपने आप में एक जिम्मेदारी है और उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ के आती हैं।
हाँ जी,
लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी वो रही
हाँ जी,
कि 2015 से 20 तक तो मैं समझिए सिर्फ अपने शौकिया लिख रही थी, और कोई प्रेशर नहीं था छपवाने का, जैसा मैंने कहा मंच पे पढ़ने का। तो मैं जब खाली होती तो लिखती थी, तो उसमें उसमें मुझे कभी उस समय में संघर्ष तो नहीं करना पड़ा डेफिनेटली। और 2020 में जब मैंने लिखना शुरू किया, बेटे बेटा भी था तब, तो तब कठिनाइयां हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, कठिनाइयां हुई क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी हो गई फिर, मतलब जो विवाह के बाद जो जिम्मेदारियां बनी मेरी वो थी, और बेटा भी साथ में, और उसी समय उसका जन्म हुआ था, मई मई 2020 में उसका जन्म हुआ। और मैंने अपनी पहली जो कहानी लिखी वो अगस्त सितंबर 2020 में लिखी, तो वो कुछ ही महीने का था उस समय। तो
अच्छा
अच्छा, मुझे आदत है हमेशा से मैं रात में लिखा करती हूँ कहानी, क्योंकि रात में कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। रात में आप जब एक बार लिखने बैठे तो आप लिखते चले जाते हैं उसको,
हाँ
कोई आपको काम नहीं होता उस समय। तो ये एक
जी
मेरी आदत शुरू से थी, मैं पढ़ाई भी मैंने जब की यूनिवर्सिटी में तो मैं रात में जग के पढ़ाई किया करती थी, तो ये मेरी आदत थी, और यही मैंने लेखन में आज भी मैं यही कर रही हूँ कि मैं रात में लिखा करती हूँ। और फिर मैं चाहे पूरी रात जग के लिखूं, या मैं सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ अभी भी, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो दोनों को दोनों को लंच देना, दोनों को भेजना, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरा दिन 5:30 बजे शुरू हो जाता है, और चाहे मैं 4 बजे सोऊं या 4:30 बजे, मेरी आदत बनाई मैंने कि मैं ये कभी किसी से नहीं कहती उठ के कि आज मैं रात भर सोई नहीं हूं, आज ये काम मेरा आप कर दो, या आप लंच ऑफिस जाके कर लेना, ये मैंने कभी नहीं किया। मतलब मैंने ये आदत बना ली कि मैं अपना काम खत्म करूंगी दोपहर तक, और उसके बाद में मैं दोपहर में 1 घंटा 2 घंटा जो भी मुझे मिलता है उसमें मैं आराम करती हूँ। तो वो जो एक संघर्ष वाला वो था ना, वो नहीं हुआ इसलिए कि अपने आप को भी एक वो कर लिया कि नहीं, जो हमारी जिम्मेदारी है हमें ही करनी है पूरी। अगर अपनी जिम्मेदारी आप लिखने के लिए किसी और पे डालेंगे तो फिर
तो आपने
शायद मतलब कोई कब कब तक करेगा आपके साथ।
हाँ जी बिल्कुल, तो आपने वो संघर्ष को अपने तक आने ही नहीं दिया, आपने ही खुद से ही अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दिया, तो
सही कह
संघर्ष
सकते हैं आप।
आया ही नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा ही ना?
तो अभी तक तो गाड़ी आराम से चल रही है, आशा करती हूँ आगे भी ऐसे ही
हाँ
चलती
जी,
रहेगी।
तो वो टाइम नहीं, हम भी आशा करते हैं कि आपकी गाड़ी यूं ही आगे बढ़ती रहे, और बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रही है आप, तो बस ऐसा ही होना चाहिए। तो आपकी रचनाएं काफी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे छिपी हुई हैं, सबका नाम लेना तो शायद मुश्किल है, पर इनमें से जो आपके दिल के करीब है, जो आप बोल सकती है, तो आप बोल दीजिए कि किन किन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रचनाएं छिपी हुई है, तो क्या है कि वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपको पढ़ पाए, उनको भी मौका मिले आपको पढ़ने का, तो इसलिए कह रही हूँ कि वो नेशनल और इंटरनेशनल जो लेवल पे आपकी
जी,
कहानी हिंट
मेरी
है वो हम आपसे
खुशकिस्मती
सुनना
कहिए
चाहते
कि
हैं।
मेरी जो सबसे पहले जो कहानी छपी, ये मेरी कहानी है कंगन, वो मेलबर्न के से एक पत्रिका निकलती थी हिंदी पुष्प, उसमें छपी थी। जी, और
अच्छा, क्या
उसके
बात है,
बाद जो मेरी कहानी छपी वो छपी कनाडा से, एक डिजिटल पत्रिका निकलती है साहित्य कुंज, उसमें छपी। एक कहानी है मेरी मकसद, वो उसमें छपी। मकसद एक ऐसी स्त्री कहानी है जिनके पति उन्हें उस समय छोड़ के चले गए, और उसके बाद किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा किया, वो उनके जीवन पर आधारित है। जी, तो मेरी कहानियां अक्सर होती है ऐसी हैं
क्या
जो
बात है,
आसपास में घटनाएं घटती हैं, उन्हीं में से किसी एक घटना से प्रेरित होकर मैं कहानी बनाती हूँ। तो मेरी सभी कहानियां इस कारण से मेरे दिल के बड़े करीब हैं, वो मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, माँ को सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल वही मेरी स्थिति है। और मेरी कहानियां पढ़ने के लिए
हाँ
साहित्य कुंज
जी
में जितनी अब तक छपी हैं वहां पढ़ सकते हैं, और कई एंथोलॉजी ऐसी छपी हैं
हाँ जी
जिनमें छपी हैं मेरी कहानियां। और एक कहानी मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली अभी लिखी है, हाल ही में, अगले जन्म मोहे, वो कहानी एक बड़ी भयानक
अच्छा
घटना जिसको कह सकते हैं आप, एक बच्ची का जन्म हुआ और उसके माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है और उन्हें एक बेटे की इच्छा थी। ये
ओ
इस विषय पर वो
ओ
कहानी मैंने लिखी है, और उस बच्ची के जीवन पर वो कहानी आधारित है। ऐसे ही एक कहानी मैंने लिखी है नामर्द, वो लघु कथा है जो जैसे हमारे समाज में है ना, अगर किसी के बच्चा नहीं होता तो हम स्त्री को बांझ कहते हैं, या पुरुष है तो उसे नामर्द कहना शुरू कर देते हैं, जबकि ये
हाँ जी
कई बार मतलब अधिकतर ही मैं देखती हूँ कि किसी कपल की गलती नहीं होती कि उनके कोई इश्यू नहीं है या कोई संतान नहीं है, ये कई बार मेडिकल इश्यूज होते हैं जिनपे किसी का कोई बस नहीं होता। तो मेरी क्या सोच
हाँ
है
जी
कि नामर्द कौन है या बांझ कौन है, उस सोच पर मैंने वो कहानी लिखी थी जी। और एक
ये तो बहुत ही
कहानी
बढ़िया
जी,
विषय है वो, क्योंकि
अच्छा एक कहानी
बोलिए
लघु कथा एक और
बोलिए
जो
आप
मैंने
बोलिए।
लिखी मंथन है वो, और वो मुझे इसलिए बहुत प्रिय है कि कहीं जा रही थी मेट्रो से और कॉलेज की दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि बात ये हो रही थी कि मेरा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। तो यहां से बात शुरू हुई और एक बच्ची ने उसमें कहा आई जस्ट डोंट लव हिम एनी मोर। वहां से मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि हम कैसे कैसे ऐसा होता है कि हम किसी से बेहद प्रेम करते हैं और फिर एकदम हम उससे प्रेम करना एक दिन बंद कर देते हैं, ऐसा कैसे होता है। तो मैंने बहुत इस पे विचार किया और मुझे ऐसा लगा कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम सबसे पहले उसके साथ और दूसरे भावों से उसको जानते हैं, जैसे हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसमें शायद एक दोस्त देखते हैं, और भी बहुत सी ऐसी भावनाएं होती हैं जो प्रेम जिनके जब वो जन्म लेती हैं उसके बाद प्रेम होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रेम अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी भावनाएं जब मिल जाती हैं तो हम किसी से प्रेम कर पाते हैं। तो इस पर
हाँ
मैंने ये
बिल्कुल
कहानी लिखी थी कि कैसे प्रेम मतलब इन भावनाओं का एक मिश्रण है कह सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ माँ और बच्चे का प्रेम ऐसा
हाँ
होता है
जी
जो कि मतलब सिर्फ कि माँ को देखते ही बच्चे से प्रेम हो जाता है, लेकिन अगर उसे भी देखेंगे तो वो भी एक 9 महीने के लंबा अंतराल, लेकिन हाँ पहले ही दिन से जब माँ को पता चलता है कि एक बच्चा होने वाला है तो उसकी भावनाएं बहुत अलग होती हैं। तो अगर मतलब मेरा ऐसा मानना है लव एट फर्स्ट साइड जिसको लोग कहते हैं वो शायद एक माँ और बच्चे में ही हो सकता है, और
हाँ
जिनके जीवन में ये घटना वाकई घटी है अगर, तो वो बहुत खुशकिस्मत है, मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन अधिकतर प्रेम ऐसा ही होता है, पहले हम किसी को जानते हैं पहचानते हैं उससे दोस्ती करते हैं फिर किसी न किस बात पे उससे उसका सम्मान करते हैं। तो मेरी सोच यही है।
नहीं, बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी प्रेम के ऊपर। और वो कहते हैं ना, पाने को ही प्रेम कहे जग की यहेरी, तो जग क्या है कि बस पाने को ही प्रेम करता है, पर जब वो पाना छूट जाता है ना कहीं
जी
तभी प्रेम स्टार्ट होता है, मेरा ऐसा मानना। और आपकी आपकी भी सोच वही है, तो हम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है। और आपने वो सोशल लाइफ के ऊपर बहुत 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 सारी कहानियां लिखी। आपने लिखा कि एक लव के ऊपर, एक बेटी के ऊपर, कि अगर बेटी ना हो तो फिर हम लोगों को ये लगता है कि बेटा ही सब कुछ है। तो एक अवेयरनेस लाने का काम आप कर रही है, और बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि अगर हम सोसाइटी को वो दर्पण ही नहीं दिखाएंगे कि कैसी है सोसाइटी, तो कैसे होगा। वो जो एक समाज में सुधार लाने का काम कर रही है, तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है आप। तो चलिए, आप अपनी ही मुंह से कुछ कविताएं सुना दीजिए, आपकी जो दिल के करीब है, आपकी कुछ
मेरी
कविता सुनना चाहेंगे।
कविता, अच्छा
पहले छोटा सा कोई मुक्तक ही हो गया।
हेलो गीतिका जी।
हेलो।
हेलो।
हाँ जी,
हाँ जी, वो आपकी आवाज
सुन पा रहे हैं अब आप
शायद।
मुझे?
हाँ जी,
अच्छा, तो आप
हाँ जी, हाँ
सुन पाए कविता या
हाँ हाँ
नहीं?
जी,
अच्छा,
आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे। वो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, आपकी आवाज क्यों नहीं सुन पा रही हूँ।
कि मैं चार पंक्तियां सुना देती हूँ, शायद आपके पास भी समय कम होगा अब।
हाँ जी, ओके।
तो चार पंक्तियां जो मैंने लिखी थी अपने पति के लिए, उनके लिए सुना देती हूँ।
अच्छा
तुम मेरे
अच्छा क्या
कृष्ण
बात है।
हो, मैं तो बंसी हुई, तुमसे कैसे कहूँ जो है हालत हुई। मैं तुम्हें पूजती हूँ अब शामों सहर, मैं तुम्हें पूजती हूँ अब शामों सहर, कभी राधा हुई कभी मी, कभी राधा हुई कभी मीरा हुई। धन्यवाद।
बहुत ही बढ़िया लगा। और अगर मैं ताली बजा सकती, क्योंकि एक हाथ
धन्यवाद,
में
बहुत
फोन
बहुत।
पकड़ा हुआ है, तो मैं ताली जरूर बजाती। बहुत ही अच्छा लगा। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आपकी जो राइटिंग स्किल है वो भी बहुत अच्छी है, और आपको मिलके बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। तो बस आइए
जी
चलते हैं, अब इस इंटरव्यू सेशन का एंड करते हैं। आगे भी मिलते
जरूर
रहेंगे कुछ ना
जरूर।
कुछ प्रोजेक्ट के चलते हम लोग। ओके, और हम विश करते हैं। हाँ जी, और हम विश करते हैं कि आपकी हेल्थ बढ़िया रहे, आप
जी
आगे
राधे
बढ़ते रहो।
राधे पायल
तो
जी, बहुत
चलिए,
अच्छा
राधे
लगा आपसे
राधे
बातचीत करके। इंटरव्यू
राधे
जैसी
जी।
फीलिंग नहीं आई, ऐसा लगा
धन्यवाद,
जैसे
थैंक
आमने
यू।
सामने बैठ के आप और मैं बातचीत कर रहे हैं।
हाँ जी, हाँ जी,
जी
क्योंकि एक पर्सनल कनेक्शन है ना
जी
हमारा, तो इसी वजह से आपको ऐसा लगा कि
जी
दिल से
बिल्कुल
दिल मिल जाते
बिल्कुल।
हैं तो
जी
ऐसा
जी
होता
बिल्कुल,
है।
बहुत अच्छा
ओके,
लगा।
आपको अच्छा लगा ना।
जरूर
हाँ
जरूर,
जी,
आपका बहुत बहुत
चलिए,
धन्यवाद।
तो हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक
नमस्कार नमस्कार।
यू, वेलकम, नमस्कार, नमस्कार।
तो ये था गीतिका सक्सेना जी का इंटरव्यू। तो आपको कैसा लगा गीतिका सक्सेना जी का इंटरव्यू, उसकी लाइफ स्टोरी, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी कविताएं? तो आप हमें बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि है PYL_PULSE_PILS_PULSE। जी हाँ, आप हमें DM करके, स्टोरी में डाल के, स्टोरी में हमें मेंशन करके, या फिर पोस्ट बना के, रील बना के आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मोटिवेट करते हैं, तभी तो हम आपको नए नए सेलिब्रिटीज से मिलवाते रहेंगे, हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, कोई हमारे काम को सराहता है। और आप हमारे इस ऑथर को, गीतिका सक्सेना जी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है GSAXEN1809। आप वहां जाके भी उन्हें DM कर सकते हैं, उनकी जो कविताएं आपको अच्छी लगती है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आपकी कविताएं हमें अच्छी लगती है मैम, तो उनकी भी हौसला अफजाई हो सकती है। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे बाय बाय कहने का। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, कुछ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू के साथ, या तो फिर कोई कंपटीशन के जरिए, कुछ एंथोलॉजी के जरिए, या फिर कुछ मोटिवेशनल ऑडियो के जरिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो चलिए, बाय बाय, शाहिनारा, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।